ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಂ ಉದೀರಯೇತ್. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ ಸುಪಾಠ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ
47
तो श्लोक आपका बोर्ड में 47 लिखा है, उसको आप आवृत्ति कर लेते हैं. तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयान्मात्मनामवीत् नोधाविधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पवद्मिभुः तस्यामाधत्तरेतस्तं भावयन् आत्मना आत्मवीत् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद्विभुः तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्तम् आत्मनात्मवीत् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद्विभुः शब्दार्थ तस्याम उसमें आधत्त स्थापित किया रेतः वीर्य ताम उसको भावयन मानते हुए आत्मना अपनी अर्धांगिनी के रूप में आत्मवित आत्मा का ज्ञाता, नोधा नो में विधाय विभक्त करके रूपम शरीर स्वम अपने सर्वसंकल्पवित समस्त इच्छाओं के ज्ञाता विभु अत्यंत शक्तिमान कर्दम ऋषि। उसके पहले श्लोक से उसको पढ़ लेते हैं क्रमानुसार। श्लोक संख्या 45। तस्मिन् मीमान उत्कृष्टां सयां ग्रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तंकाळं पत्यापि चेन संगता। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं काम इच्छा बढ़ाने वाली सया में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। तात्पर्य, भौतिक मनुष्य को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। एवं जोगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो सतं व्यतीहु सरदः कामलालर सयोर्मनाक। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी जोग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और एक सौ वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तस्यामाधत्तरे तसां भावयन् आत्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पवित् विभुः। सर्वशक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उससे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। आपने आपको नौ रूप में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में नौ बार वीर्यपात किया। तात्पर्य, चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कोई संतान चाहती है, अतः उन्होंने एक ही बार में नौ संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें कहा गया है, यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ से नौ कन्याएं उत्पन्न की। ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीमितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत के इसी प्रसंग में देवहूति के द्वारा शोक के वर्णन किया गया है। क्यों देवहूति शोक की देवहूति के पति तो इतने बड़े समर्थ पुरुष हैं, कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो 10,000 साल तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर चुके हैं, भगवान से आशीष पा चुके हैं, ब्रह्मा जी से आशीष पा चुके हैं, इतने बड़े योगी पुरुष हैं, क्यों शोक कर रही है? देखिए, भागवत में हर एक प्रकार से, भागवत क्योंकि विभु है, सभी के लिए हर प्रकार से ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी प्रकार के लोग, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, सभी के लिए, सभी के लिए उनसे समाधान है, सबके ज्ञान है। तो वहाँ पर देवहूति राजपुत्री थी, मनुपुत्री थी, साम्राज्य पुत्री थी, तो जो भी हो उन्होंने उनको कर्दम ऋषि से विवाह दिए। कर्दम ऋषि से विवाह होने के बाद में तो उनका हनीमून तुरंत नहीं हुआ, वो शादी करने के बाद फिर बैठ गए अपने तपस्या में कर्दम जी, और उनकी सेवा करनी पड़ी। बेचारा अभी अभी शादी हुआ, कुछ नहीं, वो तो जंगल में ही थे, पेड़ के नीचे बैठे थे कुटिया में, उनका कोई महल नहीं था। यही आजकल कोई किसी की बेटी हो, कोई थोड़े बहुत आप समर्थ हैं तो पहले ढूंढेंगे कोई अच्छा नौकरी वाले हो, हाँ तब ढूंढ कर देते हैं। लेकिन ये मनु महाराज, मनुष्यों के राजा, सम्राट, उनके बेटी इतनी रूपवती गुणवती थी, तो उनके लिए कैसा कैंडिडेट ढूंढे उन्होंने, जिन्होंने कहाँ जंगल में 10,000 साल से सेविंग भी नहीं किया। अरे कोई नाई थोड़ी होंगी इधर, अब कोई खड़ा था, कुछ भी नहीं था, ना व्यापार बाणी, ना दुकान, घर बाड़ी, मकान, कुछ भी नहीं था, जंगल में खड़े थे, तप कर रहे थे, लेकिन उन्हीं को ढूंढे, यही मेरे योग्य पति है। हाथ जोड़ करके पति पत्नी मनु और शत्रुपा अपने सारे ताम झाम के साथ गए वही कुटिया, उनके कुटिया में, जंगल में जाकर हाथ जोड़ करके बोले कृपा करके उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान भी यही बोले, ब्रह्मा जी बोले उन्हीं की दो, ये फिट कैंडिडेट है। अब जो भी हो, तो कर्दम जी को भगवान बता देते, बोले 2 दिन के बाद आने वाले हैं, आपके शादी हो जाएगा, हम कैंडिडेट फिक्स करते हैं। तो ही हुआ, तो स्वीकार किए कर्दम ऋषि ने, स्वीकार भी कंडीशन किए थे, देखो हम पत्नी के रूप में स्वीकार तो करूँगा, लेकिन पुत्र होने के बाद, संतान होने के बाद मैं फिर घर छोड़ के चला जाऊँगा, बोले हाँ चलेगा, एग्रीमेंट हुआ था पहले से। तो वो शादी करने के बाद वो लोग चले गए, माता पिता सब कन्यादान करके, अब कन्या बैठी है, वर बैठ बैठ गए तपस्या में, लो अब क्या करेंगे। तो उनके कपड़ा वड़ा तो होता नहीं था, क्या धोएंगे, आयरन फायरन हीटर भी नहीं होता था, कोई ज़्यादा काम नहीं था, किचन भी होता नहीं था यहाँ जंगल में, फल मूल खरीद के लाएंगे तो धो कर कोई देंगे, और जंगल पानी तो था ही, सरस्वती नदी, स्नान के लिए कोई दिक्कत नहीं था, और कोई जंगल कोई है ही नहीं थे, अकेले थे। तो जो भी फल मूल कलेक्शन करना, बैठना, वही उनके साथ जो बैठे कुछ बोलने तब करे, वही बैठ के तब कर रहे, बोर होती होगी क्या करें, यहाँ तो कोई मार्केट बाजार फिल्म हॉल कुछ था नहीं, ना कोई टीवी, व्हाट्सअप, एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, कैसे टाइम पास करेंगे। जो भी हो उनके सेवा के लिए, उनके लिए कुछ लेकर के रखना, उनके लिए सरिया प्रस्तुत करना, उन्हीं काम में लगी रही बरसों तक, और यहाँ कोई पाउडर, सेंट, शैम्पू, तेल फेल कुछ नहीं मिलती थी। तो राजकुमारी बिचारी, वर्णन आता है कि उनके बाल क्या हो गया, जटा हो गया, और शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गई, और कोई खान पान ठीक से नहीं थी, तो इसलिए इतने दुर्बल, दुबली पतली हो गई। वो लेकिन उसके लिए इतने शोक नहीं थी उसको, और पति के चाहते हैं, पति कब उनका मनोवांछा पूर्ण करेंगे, सेवा में लगी थी। एक दिन जब देखे कर्दम ऋषि ने कि वो शादी के बाद इतने दिन बीत गया, दुखी है बेचारे, बहुत मैली कुछ दी, दुबली हो चुकी है, तब उनके प्रसन्न करने के लिए अपने पत्नी को तुरंत आपने जोग प्रभाव दिखा, वो रो रही थी, बोले कोई बात नहीं, जाओ ये कुंड है उसमें स्नान कर लो, क्या होगा, अरे जाओ तो सही, डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाया, हजारों दासियां आ गई, उनको श्रृंगार करने लगी, नाना प्रकार के तेल फेल लगा करके शरीर को मसाज करके बिल्कुल ऐसे रूपवती ऐसे श्रृंगार कर दिए और यहाँ से बिल्कुल सद धज करके पानी से निकली कई सखियों के साथ, और आते ही उनके लिए सेलेस्टियल प्लेन वेट कर रहा था। इतने बड़े विमान व्यवस्था किए थे योग शक्ति से, जिनके अंदर स्विमिंग पूल था, नदी था, और पूरे गमन एक स्टेट जैसा वर्णन भारत में कहते, इतने बड़ी प्लेन था और बिना पेट्रोल में बिना पायलट में चलता था। कई उसमें घर बना हुआ था, क्या व्यवस्था था उसमें, ऐसे बनाए और उसी में हनीमून के लिए गए। आप लोग कोई जाते हैं एक आध दिन दो दिन के पैसा खत्म हो जाते भाग कर आते हैं, लेकिन उनको तो कोई पैसा का सवाल ही नहीं था, कोई धन के लिए था नहीं, कोई मार्केट जाए। वैसे ही विशेष जो विमान वो बनाए थे योग शक्ति के प्रभाव से, इतने बड़ी विशाल विमान जो बिने पैसे से बिने पेट्रोल बिना पायलट में चलता रहता था, जहाँ स्वर्ग के कोई भी द्वीप में कभी भी कहाँ चला जाता था, उसमें बैठ करके पूरे स्वर्गीय वातावरण को देखते हुए घूमने लगे। कितने दिन? 100 साल। हमारा जिंदगी तो 100 साल, दिव्य 100 साल है, हमारे हिसाब से नहीं, देवताओं के हिसाब से 100 साल। हम तो बड़े मुश्किल से कोई पिकनिक को बहुत बड़े योजना बनाएंगे, अगर एक हफ्ता का टूर प्रोग्राम हो गया लेट, एक हफ्ता ज़्यादा, इतने छुट्टी नहीं मिलेगा, फ्लाइट में जाना पड़ेगा, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे को आ जाना चाहिए। इतने ही इतने से बोलते हैं कि हाँ 4 दिन तक गया था और क्या, आने के बाद हमको दुख नहीं होता। लेकिन उन्होंने देवताओं के हिसाब से 100 साल तक उस प्लेन में घूमे, कितने कितने अड्डा स्थली पर गए होंगे, कितने उपद्वीप पर गए होंगे, और खान पान की व्यवस्था तो आपसे पढ़ चुके होंगे, कैसा खान पान की व्यवस्था, कितने दास दासियां थे, कितने क्या क्या व्यवस्था था, इतने सुपर अरेंजमेंट था। हम लोग तो जाते तो खरीद कर लेकर जाते हैं, फिर खुद बनाना पड़ता है और तेल मसाला खराब हो जाता है, खा नहीं पाते हैं, झगड़ा करके आते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है, उनका तो सारे मन जैसा सोचते थे ऐसे ही खाद्य पेय सज्जा स्नान सौंदर्य की भूमि सब इसी प्रकार काम वर्धक बोले रति क्रीड़ा के वृद्धि करने वाली सज्जा में दोनों पति पत्नी दंपति रहे 100 दिव्य वर्ष तक, उपलेन में ही रहे, घूमते रहे जो मर्जी, और उसके अंदर सारे कुछ व्यवस्था था जो आजकल कोई स्टेट में भी नहीं हो सकता, इतने व्यवस्था उसके अंदर थे। वो 100 साल तक घूमे, बोलते हैं 100 साल देखते देखते बीत गया। भगवान गीता में कहते हैं भोगोश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम समाधो न विधीयते, बोलते हैं उनका काम समाधान नहीं होता है, बेचारे भोग ऐश्वर्य में जो आसक्त हो गया तो उनका चित्त उसी में फंस गया, तो पता नहीं चला टाइम कैसे चला गया, टाइम चला गया पता नहीं, बीत गया। हम लोग को तो इतनी परेशानी है भौतिक संसार में, नाना प्रकार दुख है, टेंशन है ना, नहीं, लेकिन फिर भी लोग, मैं देखता हूँ कभी कभी, मैं देखता हूँ जाते समय के ट्रैवलिंग में क्या करते हैं, मूंगफली खाता है टाइम पास करने के लिए, नहीं टाइम पास करने के लिए मूंगफली खाता, टाइम पास नहीं होता आपका ना, क्या करें इतने देर तक, बताओ टाइम हमको पास कर जाता है, लेकिन लोग अगर इसको सोचा जाए, मैंने शर्म का हद हो चुका है। इतने टाइम देवताओं के हिसाब से देवता लोग मनुष्य को देखते हैं, बोले अरे कितने हद, कितने देर की जिंदगी है उसका, आया अब हुआ अब बड़ा मर गया खत्म, वो इतने में हम लोग बोलते हैं टाइम पास करने के लिए करना पड़ता है क्या, अरे टाइम क्यों टाइम पास करने के लिए, क्योंकि जो काम हम करना चाहिए उसको करते ही नहीं, नील ठाकर बैठे इसलिए टाइम पास, जिन जिन कार्य के लिए हमको बनाया गया था, जिन लक्ष्य के लिए हमारा प्रोडक्शन किया गया है उसको हम जानते नहीं, भूल गए। देवहूति ऐसे ही बात को शोक कर, अब आगे अब पढ़ेंगे उनका शोक विधिवत बढ़ेगी, बोले कि क्या क्या मैंने पति के सामने ऐसे किया, पति ने मेरे मन पूरा किया, मन के ऐसे पूरा किया पूर्ण किया कि 100 साल तक दाम्पत्य सुख भोगे सेलेस्टियल प्लेन स्वर्गीय विमान में चढ़ करके, और उसके बाद में एक साथ में जुड़वा संतान नहीं 9 बेटी हुई, ऐसे भी आजकल एक बेटी होने से भी शोक करते हैं, तो उनका 9 बेटी हो गए लेकिन वो उनका शोक का कारण नहीं थी, आगे बताएगी देवहूति जब उन्होंने बोलेंगे बस मैं चलूँ, कर्दम जी बताएंगे बोले नहीं 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 आप कैसे जाएंगे, ये आपके बेटी जो है ये तो सब आपके तरह महाविदुषी महारूपवती गुणवती है, वो तो अपने अपने हस्बैंड अपने चुन ही लेंगे, इसमें मेरा कोई डाउट नहीं, वो तो चल चलेंगे अपने घर अपने सिलेक्ट कर लेंगे, मुझे इसमें कुछ करने टेंशन भी नहीं लेना है, कोई ढूंढना नहीं, किसी को देना लेना कुछ नहीं करना है, ना आपको करना मुझे भी करना है, वो अपना आप समर्थ है सब कर लेंगे, लेकिन आप भी चले जाएंगे वो चले जाएंगे मेरा क्या होगा, मेरा जीवन तो ऐसे ही बीत गया, वो छोड़ के चले गए, मैं क्या करूं, मेरे अंतिम जीवन कैसे सुख हुआ, मेरे जीवन के लक्ष्य में कैसे प्राप्त करूं, यही शोक है उसका, पूरे जीवन तो ऐसे सुख बिता करके गया, सारे जीवन में आप जैसे महापुरुष मेरे साथ में मेरे पति थे, इतने बड़े आत्मज्ञानी पुरुष थे, मैं आपसे कुछ सीखा ही नहीं, इस शरीर सुख के लिए मांगा और आप मुझे वही दिए, बस इसे सुखी कर दिए, और शरीर तो ऐसे ही बुढ़ा होकर मरने वाला है, जिस काम के लिए मेरा असली प्रोजेक्ट था उसको तो भूल ही गया, अभी आप जाने बैठे हैं, लड़कियां चली जाएगी आप भी चले जाएंगे, मेरा क्या होगा, मेरा तो उस काम नहीं, मैं तो बूढ़ी हो गई, शरीर तो बुढ़ा हो ही जाता है, बूढ़ा बूढ़ी हो जाता, अब जो मेरा असली कर्तव्य है जो कार्य है वो तो नहीं हो पाया, इसलिए शोक कर रही है, ये शोक करने का योग्य केवल देवहूति नहीं कर रही है, हम सभी को करना चाहिए, हम सभी केवल और देवहूति जैसा सुख तो हमको मिला, हम स्वप्न में सोच भी नहीं सकते, ये पढ़ करके हमको दिमाग फंसाने ऐसा व्यवस्था ऐसे, अरे हम तो पूरे पूंजी इकट्ठा करके एक बार प्लेन में चढ़ जाते हैं, डोमेस्टिक थोड़े ये तो ऐसी बात है, हम भी प्लेन में बैठे हैं, लेकिन ऐसा प्लेन अभी तक जो जिंदगी भर प्लेन में वो भी नहीं जानते होंगे, ऐसे जो प्लेन की व्यवस्था ये आ गया है ना, नहीं ऐसे सुख की व्यवस्था हमें भौतिक संसार में कितने भी बड़े से बड़े धनी से धनी व्यक्ति स्वप्न में सोच भी नहीं सकता, जो कर्दम ऋषि के पास कुछ भी नहीं था, पेड़ के नीचे बैठने वाले थे, यही बताऊं, आप बोलते हैं कि धन कमाने के लिए अच्छा नौकरी किया, 8 घंटा 10 घंटा खटता है, कोई दुकान चलाता कोई ऊपर, इसमें क्या सुख मिलेगा, ये देखिए तपोबल महाबल, कुछ नहीं किए थे, जंगल में जाकर तप किए, तब करने के बाद जो शक्ति हुआ, नया पैसा बैंक में अकाउंट नहीं खोले थे, अब अपने पत्नी के लिए सुख की जो व्यवस्था किए, हम कभी स्वप्न में सोच नहीं सकते, हम क्या पूरे विश्व के जो बड़े बड़े आदमी हैं सारे मिल करके, अरे सैकड़ों साल लगा करके उसकी कोई कुछ नहीं सोच पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, मन कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये काम तभी संभव हो सकता है अगर आप तपस्या करके भगवत प्रसन्नता कर ले, तो की दिखाए ना, नहीं कर्दम ऋषि कुछ किए नहीं, वो जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल नहीं हुए, सारे लोन लेकर के स्टडी लोन लेकर जा कुछ पढ़े नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, सीधा कपड़ा लता छोड़े, कुछ भी साथ में ब्रीफकेस ट्रूथ बस्ट सेविंग किट भी नहीं लिए, चल पड़े जंगल में, कोई देखने का है नहीं, वीरान जंगल में सरस्वती नदी के किनारे जा करके उर्ध्वभाव होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्ययुग का मंत्र था, 10,000 साल तक कठोर तप किए, आज इसी के परिणाम है, अगर गृहस्थ भी बने तो ऐसे पत्नी को सुख दिए तो कैसा व्यवस्था, और क्या शक्ति क्या प्रभाव था उनको, लेकिन इतने शक्तिमान इतने प्रभाव होते हुए भी पत्नी को संतुष्ट करके संतान उत्पन्न करके जो किया संतान, फिर बोलते मैं जाऊं क्यों, क्योंकि तपस्या किए हैं, उनके हृदय शुद्ध हो चुका है, उनको पता चलता है ये थोड़े दिन के लिए उनको खुश करना था, क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ और दोबारा वो अपना चला बैस में तो जाऊँ, वो जानता है जीवन के असली आवश्यकता क्या है, जीवन के असली लक्ष्य क्या है, क्या इसलिए करना चाहिए, ऐसे फंस कर रहना नहीं चाहिए, कर्दम मुनि जैसे ऐसे समर्थ पुरुष, देवहूति जैसे पत्नी राजकुमारी उनको प्राप्त थी, और क्या व्यवस्था नहीं थे उनके लिए, कोई नहीं था कि मैं क्या करूं, कुछ आपके लिए इंश्योरेंस में डाल दूं, कुछ फिक्स डिपोजिट कर लूं, कुछ कुछ करना ही नहीं था, इच्छा मात्र से ऐसे विभु पुरुष थे, उनको विभु कहा क्योंकि तपस्या से तपोबल प्राप्त किए हैं, ऐसे जोग बल तपोबल प्राप्त किए थे, कोई चीज इनके लिए कमी नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारे होते हुए वो जानते थे कि जीवन के असली कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। उसको नहीं कर पाया तो सारे विकार हो गया। इसलिए बड़े सजाग थे, समय पर पत्नी को अपने इच्छा पूर्ति करके वो निकल रहे थे। देवहूती माता रो रही थी, बोली मैं क्या करूँ, आप चले जाएंगे, बेटियाँ भी चले जाएंगे अपने घर में, अपना अपने क्या बोलते हैं, मैं अपना अपने ससुराल में चले जाएंगे, अपने पति के घर में, मैं क्या करूँ अकेली, मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे जीवन के लक्ष्य क्या है। इसी के लिए शोक कर रही है। बोले आप जैसे पुरुष मेरे पास थे, मैं आपके साथ रह के लिए केवल इंद्रिय सुख ही इच्छा की, वही मांगी, आप मुझे वही भी दिए, मुझे आपने जीवन के असली उद्देश्य के बारे में कोई ट्रेनिंग कोई शिक्षा नहीं दी, तो इसलिए कुछ तो व्यवस्था मेरे लिए कीजिए। तो कर्दम मुनि ने फिर उनको एक पुत्र दे करके चले जाएंगे, वो ऐसे पुत्र दिए, वो पुत्र ही माँ को उद्धार कर डाला, वो तो भगवत अवतार हुए कपिल देव जी। तो ऐसे ऐसे पति होंगे तो पुत्र भी भगवान आते हैं। जो भी हो, पति भी ऐसे समर्थ थे, पुत्र भी ऐसे समर्थ थे, जो माँ को या पत्नी को बहन को सभी को उद्धार कर सकता है। वास्तविक जो आश्रयदाता होते हैं उनके यही उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पंचम स्कंद में एक जगह पर भागवत में कहा भी गया है, जैसे पति न सस्यात, गुरु न सस्यात, और क्या क्या सब बता गया, चार पांच और पोस्ट, कोई पति नहीं होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए, माता नहीं होना चाहिए, कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपसे जो आश्रित है, जो आपका आश्रित, उनका काम क्या, कौन सा काम ना, उनके जन्म मृत्यु चक्र से अगर बचा नहीं पाए, अगर फिर भी उन्होंने इसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इसी में फिर फंसे, तो आपके आश्रय लेकर क्या फायदा होगा, यू आर यूजलेस। आप उनके काम नहीं, आप योग्य नहीं है पति गुरु पुत्र इस बनने के लिए, बोले नहीं, तो आपको ऐसे ही समर्थ होना चाहिए कि आपके जो आश्रय लेगा तो आप उनको कम से कम जन्म मृत्यु संसार चक्र से भव बंधन से उबार डालो, फिर दोबारा उनके कष्ट में आना ना पड़े, ये उपाय से उनको ट्रेंड अप कर लो। तो देवहूति माता अब यही कहती है, मुझे तो आपने इसको ट्रेनिंग दिया ही नहीं, मुझे तो स्वर्ग सुख दिए, राज सुख दिए, दाम्पत्य सुख दिए, इतने सारे संतान दिए, सब कुछ दिए, लेकिन वो तो सब अपना जाएंगे काम करते, मेरा क्या होगा, मेरा जो असली प्रोजेक्ट, जिनके लिए ये मनुष्य शरीर मिला, जिनके लिए नर देह मिला, ये बुद्धि वृत्ति कर्मेंद्रिय सब मिला, उस किस उद्देश्य के मिला, उसकी क्या हो। हम सभी को ये शोक करना चाहिए कि हमको ये हाथ पैर बुद्धि इंद्रियां सब किस लिए मिला, केवल एक छोटी मोटी सुख के लिए प्रयास कर करके मर जाए। बोले अरे इस सुख तो भागवत में कई जगह में लिखा गया, ये जो देह जोगी ना देही नाम, देह सुख जो है वो तो सर्वत्र लभ्यते दैवात, वो तो दैव की हिसाब से सर्वत्र सब जगह में सब शरीर में प्राप्त होता है। तुम कुत्ते बिल्ली शुकर कुकर बन जाओ तो भी प्राप्त होगा, वही जो सुख चाहते हैं वो भी वही अवेलेबल होगा, यहाँ भी अवेलेबल है, तो उसके लिए प्रयास क्या करना है, कोई प्रयास करना नहीं, वो अपने आप सब मिलता है। फिर करना क्या है, मुझे जो इतने शक्ति बुद्धि सामर्थ्य इंद्रिया कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिय किसके लिए, बोले इसके लिए मिला है केवल विष्णु पाद अपसर्पणम, श्री भगवत प्राप्ति के लिए भगवत शरण में समर्पण होने के लिए ही ये सब तुझे दिया गया, वो जब नहीं किया तो सारे यूजलेस बेकार हो गए, सारे बेकार हो गया। इस मनुष्य शरीर का एकमात्र लक्ष्य है वही, इसी को करना चाहिए, इसलिए मनुष्य शरीर के मैन्युफैक्चर हुआ है, नहीं तो मनुष्य को छोड़ करके 80 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं। आप सभी को पता है, कोई भी मनुष्य को छोड़ा कभी कोई ना पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदारी बिजनेस नथिंग, उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो है ही नहीं, अर्थनैतिक समस्या उनका है ही नहीं, है ही नहीं, उनके लिए कोई बैंक ना दुकान ना मार्केट हो क्या, बिंदास रहते हैं मस्ती, कोई समस्या है नहीं उनकी, बदमाश हमी मनुष्य है, प्रकृति के नियम नहीं मानते हैं, वो नाना प्रकार व्यवस्था करते हैं, 4 घंटा नहीं 8 घंटा और ओटी खटते हैं, 12-12 घंटा खटते हैं, मरते हैं, पेट भी नहीं भरता, जितनी व्यवस्था ज्यादा करते हैं इतने फंसते हैं, बाकी पशु पक्षी, हाथी तो खाता है क्विंटल हिसाब से खाता है, कौन सा काम दाम करता, कुछ नहीं, भूखा नहीं मरता, और हम दो तीन रोटी खाते मर जाते हैं, वो भी नहीं हो पाता। ये समस्या है, क्योंकि भगवान के नियम को हम मानते नहीं, अपने भरोसा में रहते हैं, प्रकृति के नहीं मानते हैं, इसलिए दुख भोगते हैं। भगवान खुली आम बोल दिए, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति अपने गुण के द्वारा सब कुछ करता है, वो करते ही रहेगा, ये मेरी व्यवस्था है, तो क्यों सोचता है नहीं मैं करूंगा नहीं तो पेट कैसे भरेगा। अरे हुड़बक गधे, तू जन्म हुआ था तो पेट भरना कौन भरा था, ना तेरा पेरेंट्स को पता था ना तुझे पता था किसे पेट भरूं, रोटी चपाटी दाल राइस तो खा भी नहीं सकता था, कौन व्यवस्था किए तेरे लिए, जो किया था वो अभी भी करता है, वो करेगा, कहा को टेंशन लेता है। लेकिन हम समझ में नहीं, नहीं, नहीं कैसे, बस ऐसे नहीं मानोगे तो विमूढ़ आत्मा है, मूढ़ मतलब मूर्ख, विमूढ़ मतलब विशेष मूर्ख। हम सब विमूढ़ है, हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे कैसे चलेगा, अरे तुम तेरे जैसे 200-500 का मर जाए तभी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो चलता रहेगा गाड़ी ठीक ठाक, हाँ कैसे आए कितने गए कोई कमी नहीं होता, लेकिन हम तो हाय हाय करके रह गए। इसी को शास्त्र समझता है, असली शोक नहीं करते हैं, असली शोक जिनके लिए हमको ये माध्यम प्राप्त हुआ, जिनके लिए ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ये शरीर प्राप्त हुआ, उसको जाने भी नहीं हम लोग ने, तो पाने का तो दूर बात है, इसी के लिए शोक करना चाहिए। और ये तुच्छ देह सुख जो हम प्राप्त करते हैं इस जीवन में, वो तो वो अगर कंपेयर करें सुअर कुत्ते के सामने हम कुछ नहीं है। आजकल संसार में सबसे ज्यादा दी टॉप मोस्ट हैप्पीनेस अगर किसी को पूछा जाए क्या है, वो ही सेक्सुअल हैप्पीनेस के बारे में बताएगा, है ना, नहीं इसी वर्णन इधर आता है, यही शरीर सुख, यही सुख के लिए बोलेगा सबसे बड़े सुख है, और ये सुख इसी सुख के लिए प्लान अगर किया जाए तो डरता है, भोगे रोग भयम, इस सुख का भोग करने के लिए कोई बीमारी ना हो जाए। अरे तू कैसे भोग कर रहा है, तू भोग करने से पहले से डर रहा है, अगर फिर भी केवल रोग के भय नहीं है, कोई लोग देखेंगे शर्म लगेगा, कोई गाली देगा, सामाजिक बंधन सांसारिक पारिवारिक धार्मिक और कितने बंधन, उसमें डर है, रोग भय है, और उसके ऊपर में अगर कोई संतान होना जाए और ऊपर टेंशन, तो क्या भोग करने वाला हो, इतने इतने डर रहा है, इतने भोग डर, तेरे से तो कई गुना अच्छा है स्वर, वो स्वर इनके साथ बीच बाजार में चौक में कोई फोटो खींचेगा ही नहीं उनका, कोई सोचेगा भी नहीं, पेपर में आउट कोई कुछ बोलेंगे नहीं, बिंदास डोंट केयर, तू तो इतने डर रहा है, तेरे से तो अच्छा है बेटर है, उनके लिए कोई बेडरूम का आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, गटर में गए बास रहे, अगर संतान हो भी जाए एक दो डजन, कौन सा कन्वर्ट स्कूल में एडमिशन कराना है, ना कोई कपड़ा लत्ता देना है, ना खान पर, ना प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं, क्या व्यवस्था है उन लोग का, और हम तो मर ही जाते हैं, सुख को भोगना तो चाहते हैं, सुख भोगने से पहले इतने टेंशन में पड़ जाते हैं, क्या करेंगे क्या प्लानिंग करते हैं पता नहीं, तो कैसे सुख चाहते, ये सुख है, सुख के लिए इतने तो ये नहीं है, तो मनुष्य शरीर इस सुख के लिए बना ही नहीं, इसलिए भगवान ऋषभ देव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का इस, हे पुत्र ये मनुष्य शरीर तपस्या के लिए बना है, ये इस प्रकार देह सुख बिड़ भुजाम, जिस प्रकार ये सब सुकर कुकर जैसे खा पी करके इसी के लिए इस मनुष्य शरीर नहीं मिला है, मनुष्य शरीर तो केवल तपस्या करके ब्रह्म सुखम तु अनंतम, जो अनंत अनंत गुना इस शरीर के सुख से जो सुख है इस सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। थोड़ा सा तप करके तैयार हो जाओ तो अनंत अनंत गुना सुख प्राप्त करेगा, जैसे ये देवहूति को सुख मिला, कर्दम ऋषि को सुख मिला, और वो सुख सभी और बड़ी सुख, तभी तो छोड़कर जा रहे हैं, राजकुमारी जैसे देवहूति उनके पत्नी थी, इतने बड़े संपदा था, इतने व्यवस्था था, उनको छोड़कर कितने जा रहे हैं, क्योंकि और कुछ ग्रेटर हैप्पीनेस उनके लिए है, ओ जो भगवत सेवा सुख, भगवत प्राप्ति के सुख कितने बड़े हैं, जिनके लिए करदम जी अपने गृहस्थी घर बाड़ी अपने पत्नी छोड़कर जाना चाहते हैं, और फिर उसी के लिए देवभूति माता भी रोती है, बोले मोरी भी तो व्यवस्था करो, मैं भी तो जाना चाहूंगी। बस यही असली सुख है, इस सुख के लिए मनुष्य शरीर के मैन्युफैक्चर हुआ है। तो उसको अगर हम जाने नहीं, माने नहीं, कुछ किए नहीं, तो हमको कितने शोक करना चाहिए। जब देवहूति माता ऐसी स्थिति में रहकर शोक करती है तो हम लोग तो कितने शोक करेंगे तो सोचा नहीं जा सकता, लेकिन हम शोक करते ही नहीं, शोक करते नहीं। आए बड़े मुश्किल से क्लास में, फिर लेट में भी आते हैं, आ करके जैसे जैसे थोड़ा कान में घुसा यहाँ निकाल दिए, फिर खिचड़ी खा के चल दिए, जा क्या शोक करें। शोक थोड़ा करते हैं, खिचड़ी में नमक कम हो गया, उसमें दही और होना था, पापड़ होना था, इसी के लिए। बाकी भाई ये शरीर की तरह खिचड़ी खाने के लिए नहीं बना भैया, ये कम से कम पुरुषोत्तम मास है। ये पुरुष उत्तम मास में जितने पुरुष हैं उनको उत्तम बनने के लिए सुवर्ण सुयोग प्राप्त होता है। भगवान ने व्यवस्था करके 3 साल में 1 महीना दिए हैं, हे पुरुष कुंशाम आपको उत्तम बनना है, दिस मंथ इज अवेलेबल फॉर यू, इस महीना को ऐसे उपयोग करो ताकि आप पुरुष उत्तम हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जहाँ उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, उन्हीं के चर्चा करो, उन्हीं के संग करो, उन्हीं के शरण में जाओ, आप हो जाएंगे। उनके शरण में जाने के लिए सब कुछ छोड़ करके 3 साल के बाद 1 महीना आता है, एक्स्ट्रा आता है, जिसमें कोई तिथि नहीं, बार नहीं, कोई शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्म नहीं हो सकता, केवल अकर्म केवल भक्ति ही किया जा सकता है, और इतने गुना प्रभावशाली भक्ति हो सकता है। तो इसी महीना में इस तो करो, तभी हम अच्छे बन सकते, वो भी नहीं करेंगे तो इसी महीने में सेम वही करेंगे, नहीं। कम से कम मनुष्य है, ये भागवत से शिक्षा लेना चाहिए। एक माँ देवहूति पत्नी, जिनके इतने बड़े पति, इतने नौ नौ बेटी, इतने सामान सेलेस्टियल प्लेन जिनका प्राइवेटली अपना घर में है, वो इतने बड़े शोक कर रही है, क्यों क्यों मेरे जीवन के लक्ष्य में जान नहीं पाई, प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं की, और हम लोग कुछ नहीं किया, अब कभी छोटी मोटी चीज के लिए मोबाइल खो गया इसलिए रो रहे, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए शोक कर रहे, हाँ इतने तुच्छ विचारधारा हम लोग। और क्यों, क्योंकि जो असली चीज जो प्राप्य जो प्राप्त है जो पाने के लिए उसको जाने ही नहीं तो शोक क्या करेंगे, उनको जानते ही नहीं, इतने दिमाग खराब हो चुका है, इतना मूढ़बुद्धि हो चुका है। पशु पक्षी से गए भी तो पशु पक्षी तो प्रकृति के नियम के अनुसार विन्यास रहते हैं, हम तब भी नहीं है, उनसे भी गए भी थे। तो इसलिए कम से कम ये पवित्र पुरुषोत्तम मास में अब इस प्रकार के सीख लेना चाहिए कि नहीं, अब जितना हो गया हो गया, अभी जितने समय मेरा मनुष्य इस जीवन में बाकी है, जितने दिन का पता नहीं कब एक्सपायरी आ जाएगा, एक्सपायरी डेट जब तक आ जाए तब तक कम से कम उत्तम वृत्ति में काम करूं, मेरा जो कुछ है शक्ति संपत्ति सामर्थ्य उसके इस उत्तम रूप में उपयोग करूं, ताकि कुछ भी इस पूरा नहीं हो पाए तो नेक्स्ट फेज में तो होगा। भगवान कहते हैं बोले तो प्रयास तो करो, अगर मंजिल पूरा नहीं हो गया तो मैं और एक कंपार्टमेंटल चांस तुम्हें दूंगा, है ना। नहीं कोई इस प्रकार जोगी है, सुचिताम सीमताम गे है जोग भ्रष्ट भी आए थे, तो अगर कर नहीं सक्सेस अनसक्सेस हो गया और एक चांस दूंगा, और चांस दूंगा, बढ़िया व्यवस्था करके दूंगा, तो प्रयास तो करो, प्रयास करते नहीं को पता ही नहीं क्या करे। इसीलिए भागवत को ठीक से सुन करके जानना चाहिए और इसी के अनुरूप प्रयास करना चाहिए। सबको छोड़ के जाना है, जाना नहीं है, छोड़ना है इस चोला को, शरीर को छोड़ना है, जाना कहाँ जाएंगे, यहीं तो रहेंगे, कर्म अनुसार जो चक्कर लगाएंगे इसी के अंदर, वही भौतिक संसार के अंदर पड़े रहेंगे। अगर निकलने के लिए उपाय करना है तो केवल मनुष्य शरीर ही काबिल है, बाकी तो फिर नहीं हो सकता। बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है भगवत कृपा से, उसी को अब जितना मिसयूज किए किए कम से कम आज से ये कसम खाए कि इसको सदुपयोग करें। हरे कृष्ण।